بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان میں حکومت اور طالبان کے مذاکرات، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ پاکستان میں حکومت اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مجوزہ مذاکرات کے تعلق سے متضاد خبریں مل رہی ہیں۔ بعض خبروں میں بتایا گیا ہے کہ بیک ڈور مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، لیکن سرکاری طور پر اس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، جبکہ بعض حکومتی ذرائع کے حوالے سے رپورٹوں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات حساس مرحلے میں ہیں، لیکن طالبان پاکستان نے اس سے انکار کیا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے واشنگٹن میں امریکی حکام سے ملاقات میں بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے اور قبائلی علاقوں پر ڈرون حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جو مذاکرات میں پیش رفت کے لیے طالبان کی بنیادی شرائط میں شامل ہے۔ اسی کے ساتھ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ڈرون حملوں کے بارے میں اپنی تازہ رپورٹ میں ان حملوں کو جنگی جرائم کے زمرے میں شمار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو 40 سے زائد ایسے حملوں کا سراغ ملا ہے جن میں عام شہری مارے گئے ہیں جو نہ کسی جنگ میں شریک تھے اور نہ ہی کسی کے لیے خطرہ تھے۔ لیکن پاکستان کے اندر طالبان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت اور مخالفت دونوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جو حلقہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کرتا ہے وہ طالبان کی شرائط ماننے کی بھی وکالت کرتا ہے، جبکہ دوسرا حلقہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا مخالف ہے اس کے پیش نظر طالبان کی دہشت گردانہ ماہیت ہے اور اس کا خیال ہے کہ کسی دہشت گرد گروہ سے اس کی شرائط پر گفتگو اور مذاکرات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اسلام آباد حکومت اور طالبان کے درمیان بیک ڈور مذاکرات کی خبروں کی حقیقت کیا ہے، اور اگر یہ خبریں صحیح ہیں تو پیش رفت کتنی ہوئی ہے، اور یہ کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستان کے اندر رائے عامہ کتنی ہموار ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ابرار علی رضوی۔ کراچی اسٹوڈیو سے اس پروگرام میں حصہ لیں گے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر پرویز شفیع، اور لندن اسٹوڈیو سے پروگرام میں شرکت کریں گے برِ صغیر کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر مقصود صدیقی۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
دہشت گردی کے لائن حل ظاہر ہونے والے مسائل سے دوچار پاکستان میں طالبان سے مذاکرات کا موضوع کئی ہفتوں سے زیر بحث ہے۔ طالبان سے مذاکرات کے سلسلے میں آل پارٹیز کانفرنس میں متفقہ طور پر اس باتی موقف اختیار کیا گیا، لیکن اس کے باوجود متعدد حلقے اس مسئلے میں شدید تحفظات کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ طالبان نے بھی اس دوران دہشت گردانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھا اور انتہائی تشویشناک بیان دیے۔ طالبان کی اس روش کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستانی طالبان کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے میں سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے اور دوسرے فریق کی طرف سے بھی اسی طرح کی کوششیں ہونی چاہیے۔ نواز شریف نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا ڈرون حملوں کے بارے میں موقف بالکل واضح ہے اور ہماری پالیسی میں کوئی دوغلا پن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام پارٹیوں نے طالبان سے مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا تھا، جس کے بعد ہم نے مذاکرات شروع کیے، لیکن پھر تشدد بھڑک اٹھا اور مذاکرات میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ حکیم اللہ محسود کا موقف ہے کہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا گیا ہے، اور آل پارٹیز کانفرنس کے بعد حکومت نے مذاکرات میڈیا کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان سنجیدہ مذاکرات کے قائل ہیں، اور اگر مذاکرات کی سنجیدہ کوشش ہوئی تو وہ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ ان بیانوں سے یہ تاثر عام ہوا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات مشکلات سے دوچار ہیں، تاہم حکومت کے بعض اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے یہ بیان بھی آئے کہ طالبان سے مذاکرات حساس مرحلے میں ہیں۔ اسی بیچ کچھ پاکستانی اخبارات میں خبریں آئیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جہاں عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف برسر اقتدار ہے، علماء دین اور طالبان کے درمیان مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور صوبائی حکام اس مذاکراتی عمل کی حمایت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بعض سیاسی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ جن ممالک کو شدید عدم استحکام اور جبر و تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے، انہیں بعض اوقات ماضی کی دشمنی کو بھلا کر سب سے کٹر پرست جنگجوؤں کی بھی عام معافی کا اعلان کرنا پڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ جبر و تشدد سے متاثر ہونے والے لوگ اور شکار لوگوں کے لواحقین کو یہ اقدام کافی مایوس کن لگتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جنگجو صرف قول میں نہیں بلکہ فعل میں بھی دہشت گردی سے انکار کریں۔ تاہم پاکستانی طالبان کی کارروائیوں اور ان کے لیڈر کے بیانات میں اس بات کی علامت تک نظر نہیں آتی کہ وہ واقعی ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ حکام سے مذاکرات کے امکان کا ذکر کرتے ہوئے حکیم اللہ محسود نے نشاندہی کی ہے کہ ان مذاکرات میں وہ قیام امن کی اپنی شرائط واضح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ طاقت کے بل پر مذاکرات کرنے والے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی ریاست غیر شرعی ہے، اس لیے وہ اور ان کے ساتھی اس کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ تحریک طالبان کے یہ خیالات انتہائی خطرناک ہیں اور اس حقیقت سے سب واقف ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں بعض دہشت گردانہ حملے ایسے بھی ہوئے ہیں جن کے سلسلے میں تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نے کہا کہ ان کا ان حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ طالبان کے نام سے سرگرم تمام تنظیموں پر حکیم اللہ محسود کا پوری طرح کنٹرول نہیں ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکیم اللہ محسود سے حکام کے مذاکرات پاکستان میں تشدد کے دورے کے خاتمے میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے۔
بہرحال ناظرین، پاکستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان مجوزہ مذاکرات ان دنوں پاکستان کے میں بحث کا اہم ترین موضوع بنے ہوئے ہیں اور متضاد خیال پائے جاتے ہیں، متضاد رائے پائی جاتی ہیں، متضاد خبریں بھی مل رہی ہیں۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بیک ڈور مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور بعض خبروں میں اس کی تردید کی گئی ہے۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رکن ابرار علی رضوی صاحب موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ رضوی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جناب، اسلام آباد حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے عمل میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟
عرض یہ ہے کہ اے پی سی کے بعد
جی
ہم یہ تصور کرتے ہیں سیاسی حلقے خاص کر
جی
کہ اب یہ تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہے
جی
اور حکومتی پارٹی پر ہے
جی،
کیونکہ عوام گزشتہ 14 سال سے ایک ایسے عذاب سے گزر رہے ہیں جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا
جی۔
اور پیپلز پارٹی نے تو اس کے لیے 2013 کے انتخابات میں جتنی بڑی قربانی دی ہے
جی،
وہ اپنی جگہ ایک مثال ہے کہ انہوں نے الیکشن کمپین تک نہیں کی اس تھریٹ پر
جی
کہ پیپلز پارٹی کے کارکن کہیں 18 اکتوبر کی طرح یہاں پہ بھی لاشوں کا ڈھیر نہ لگ جائے۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اے پی سی بلائی تو میں ہر سب سے زیادہ سرگرم، اور پیپلز پارٹی نے جتنی سپورٹ موجودہ گورنمنٹ کو دی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب اخبارات میں جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ مختلف قسم کی رائے چل رہی ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی معاملہ بیک ڈور موجود ہے اور گفتگو موجود ہے۔ لیکن جنرل ضیاء اللہ کے اور اسرار اللہ گنڈاپور کی اور اس سے پہلے ایک اور رکن اسمبلی کے پی کے کی شہادت کے بعد یہ احساس تھوڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا اور مذاکرات نہ ہوئے تو پاکستان جتنا بڑا نقصان کر چکا ہے، شاید اس سے آگے اس میں نقصان برداشت کرنے کی ہمت نہ ہو۔ اور جس انداز میں، جس طریقے سے پاکستان کو यरगमाल बनाया गया और पाकिस्तान के आवाम को जिस तरह नुकसान पहुंचा
जी,
मेरा ख्याल है गिनती तादाद में मुख्तलिफ नंबरों में जो तादाद हो सकता है
जी जी
लेकिन इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि शहीद होने वालों की तादाद हज़ारों है और ज़ख्मी होने वालों और अपाहज होने वालों की तादाद उससे कई गुना आगे है। पाकिस्तान में एक तरफ ये तालिबान का है, अब ये भी नहीं पता कि तालिबान के कितने ग्रुप हैं, किस किस रूप में हैं। ये कहा जाता है कि तालिबान से मुज़ाकरात होंगे लेकिन अभी तक कौम को ये एतमाद में नहीं लिया गया कि ग्रुप कितने हैं
जी।
पाकिस्तानी तालिबान का असर क्या है और पाकिस्तान से बाहर तालिबान का पाकिस्तान पे क्या असर है। दूसरी बात, पाकिस्तान एक और जगह दहशतगर्दी का बेपनाह शिकार है
जी,
वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है अभी कल ही हुआ, वो भी नहीं समझ में आई अभी तक बात। वहाँ के वज़ीर आला ने भी कह दिया है APC बुलाएंगे, मतलब पाकिस्तान कई किस्म की दहशतगर्दी से दो चार है
जी।
एक तरफ बलूचिस्तान की दहशतगर्दी का अपना रूप है, दूसरी तरफ KPK में मुख्तलिफ रूप है, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान के गरीब अवाम का है। और जैसे सिंध गवर्नमेंट में आपने देखा कि उसने फेडरल गवर्नमेंट के साथ कितना तआवुन किया कि कराची के हालात नॉर्मल होने शुरू हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिल से चाहती है कि दहशतगर्दी का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, डायलॉग के जरिए निकले या किसी और ऑप्शन के जरिए निकले
जी।
लेकिन पहले ये तो डिसाइड कर लिया जाए किससे बात होनी है, कितने ग्रुप हैं
जी जी,
और कौन से मौसर ग्रुप हैं। जब वो नहीं मालूम होगा तो मेरे जैसे आदमी को भी समझ में नहीं आएगी कि मुज़ाकरात कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किससे होंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ बर्रे सगीर के मुमताज़ दानश्वर और सीनियर तज़िया निगार डॉक्टर मखसूस सिद्दीकी मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी सिद्दीकी साहब, तालिबान और इस्लामाबाद के दरमियान मुज़ाकरात के ताल्लुक से मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टें आ रही हैं। बहरहाल अभी जैसा कि अबरार अली रिजवी साहब कह रहे थे कि तालिबान के बहुत से ग्रुप हैं और किन किन ग्रोहों से मुज़ाकरात हो रहे हैं और आया ये सारे ग्रोह मिल के किसी एक ग्रोह को अपना नुमाइंदा बना रहे हैं क्या है, अभी तो यही बात वाजे नहीं हो सकी है। तो ये जो इबहाम पाया जाता है कि तालिबान के कितने ग्रोह हैं और सारे ग्रोहों से मुज़ाकरात होगी या बाज़ ग्रोहों से मुज़ाकरात होंगे या सारे ग्रोहों ने मिल के, फ़र्ज़ कीजिए कि हकीमुल्ला महसूद का जो ग्रोह है उस पर एतमाद का इजहार किया है, ये सूरत हाल, ये जो इबहाम है इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए ये जो अब सुनने में ये आया है कि 25 से लेकर 30 ग्रोह हैं और उसमें हकीमुल्ला का भी, मसूद का भी ग्रोह है जो सबसे ज़्यादा बड़ा और इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। तो बाकी जो है वो ग्रोह छोटे हैं लेकिन वो अपने तौर पे अलहदा काम कर रहे हैं और आपस में उनकी बहुत सारे मामलात पे इत्तेफाक उनका नहीं है। जहाँ तक जो मुज़ाकरात का सवाल है, जाहिर है कि जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर हैं वो तो ये हकीमुल्ला मसूद हैं, तो इनके ग्रोह से मुज़ाकरात शुरू होंगे और मुझे पूरे यकीन है कि बैक डोर में ये शुरू हो चुके हैं। बल्कि असल में ये तहरीक तालिबान के साथ तो मुज़ाकरात बहुत सालों से चल रहे हैं अगर आप देखें, और ये तो रिपोर्टों में अक्सर आया, किताबों में भी आया है कि फ़ौज के साथ तो इनके बराबर रहे हैं और अक्सर ये हुआ था कि आर्मी अपना एक्शन करने वाली थी फिर उन्होंने मुज़ाकरात करके उस इलाके में उनका एक्शन रोका, तो फ़ौज से इनका बराबर जो है कॉन्ट्रैक्ट रहा है। और ये इसलिए नहीं कि आपस में कोई किसी किस्म के पर्दे के पीछे आपस में मिलकर ये कुछ काम कर रहे हैं, बस इसलिए कि ये मुझे यकीन है कि तालिबान भी और फौज भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे को मारें। दरअसल जो सारा जो मसला वो ये है कि अमेरिकी पॉलिसी ये है कि पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाते रहो। उसमें जो है ये जो ड्रोन का जो सिलसिला है और ये जो तालिबान का है, जैसे मैंने पहले भी प्रोग्राम में अर्ज़ किया कि इसमें ये देखना है कि वो तालिबान के कौन से ग्रोह हैं जिनको बाहर से इमदाद मदद मिल रही है, और मैं तो खुल के कहना चाहता हूँ कि जिसमें सऊदी अरब और अमेरिका बिल्कुल शामिल हैं, और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी सूरत से अमन अमान कायम ना हो। मुझे ज़रा सा भी शक नहीं है इस बात से कि जो सारा जो पाकिस्तान पे मुसीबत 11-12 साल से आई हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की मौजूदगी अफगानिस्तान में, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में समझ लीजिए। अगर और 2014 में अगर अमेरिकी फौजें, नेटो की फौजें अफगानिस्तान से निकल जाती मुकम्मल तौर के ऊपर, तो मुझे यकीन है कि काफ़ी हद तक सुकून हो जाएगा और हालात जो है वो नॉर्मलाइज होंगे। जब तक अमेरिका की फौजें यहाँ पे होंगी, अमेरिका के जासूस हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में रहेंगे, वो ये पाकिस्तान में कभी अमन नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या मालूम कि ये जो इस किस्म की ये जो दहशत गर्दी हो रही है उसमें डायरेक्टली इनके अमेरिका के जासूसों का कितना हाथ है। हमारे पास ये हमको इल्म है कि हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में अमेरिका के जासूस फैले हुए हैं। अच्छा, अब जो नवाज शरीफ साहब के बारे में भी एक बात मैं कहूँ कि ये अभी अमेरिका गए हैं, और मुझे इसमें यकीन है कि जो उसकी सबसे एक जो उनकी जो गुफ्तगू होगी ओबामा साहब के साथ, उसमें ये भी होगा कि उनको ये इजाज़त लेंगे या उनसे इस गुफ्तगू करेंगे भाई किस तरह से खुल के तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, उस अमरीका को उससे इत्तेफाक है कि नहीं है, अमरीका क्या चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो के खुल के करें या पर्दे के पीछे उनसे हों। और दूसरी चीज़ ये है, जहाँ तक वो ड्रोन वाली बात है वो बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसा अभी हमने रिपोर्ट में सुना कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि ज़्यादातर जो लोग ड्रोन के हमलों में मारे गए हैं वो शहरी हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं वगैरह, तो ये भी इसमें। और जब तक कि ये ड्रोन हमले नहीं बंद होंगे, मैं समझता हूँ कि तालिबान के और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के और पाकिस्तानी हुकूमत के मज़ाकरात में कोई दम नहीं होगा। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि वापस आके कि अमरीका की मौजूदगी सबसे बड़ी वजह है ये जो पाकिस्तान इस जो बहरान से गुजर रहा है। अमरीकी फौजें, अमरीकी जासूस अगर पाकिस्तान से निकल जाएँ तो वैसे ही हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अब इसकी क्या सूरत हाल होगी उसका एहसास नहीं है, क्योंकि अभी तक कारजाई साहब से और अमेरिका से और नेटो से या उनके जो अलायंस हैं उनसे ये बात पूरी तरह से वो तय नहीं हो सकी है कि 2014 के बाद वहाँ पे क्या हालात होंगे, अमेरिकी कितने फौजी वहाँ पे होंगे, कितने जाएंगे, और जब तक वही जब क्योंकि ये जो है मेरे हिसाब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो मेन जो तालिबान ग्रुप में उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ है ये कि वो एक पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, और जो जिनका जो सबसे बड़ा जो दुश्मन समझ लीजिए वो अमेरिका है, और पाकिस्तानी फौजी और पाकिस्तानी शहरी जो है उस शिकार इस बात का हो रहे हैं कि वो हमारी हुकूमत जो है वो सख्ती से वो कदम नहीं उठाती अमेरिका के साथ जो हमको उठाना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारे कराची स्टूडियो में पाकिस्तान के एक और मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर परवेज़ शफ़ी साहब मौजूद हैं। शफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब शफ़ी साहब, हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात की खबरों की हकीकत क्या है?
असल में मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सियासत से हट के बात की जाए, इल्मी लेवल पे ज़रा बात की जाए, तो मेरे ख्याल में इश्यूज जो हैं वो खुद ब खुद ज़रा साफ और शफाफ हो जाएंगे
जी।
और इस मसले को समझने में आसानी होगी
जी।
सबसे पहली बात तो ये कि हमने या तो कहा है कि भाई या तो मुज़ाकरात किए जाएं या जंग की जाए। मसला ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही दो ऑप्शन हो, और बाद दफा आप एक ट्रैक पे काम शुरू करें, बातचीत शुरू करें, तब भी अगर डेडलॉक हो जाता है या दूसरी पार्टी सिंसियरली आपसे गुफ्तगू और बातचीत नहीं कर रही, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद वॉर का रास्ता, जो जंग का रास्ता है, वो दोबारा खुल जाता है।
जी।
इसी तरह अगर आपने फैसला किया कि भाई हमने जंग ही करनी है, तो और उसमें आप स्टेलमेट हो जाता है या बीच में रुक जाती है या खुलेआम फतह नहीं होती, या सबसे जो वर्स्ट केस सिनेरियो है कि आपके नुकसानात और लॉस इस हद तक होते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपको फिर वापस बातचीत की तरफ आना पड़ता है। तो इस तरह की सिचुएशन है, तो ये ईदर और की प्रोपोजिशन नहीं है कि भाई आपने या तो मुजाकरात करने हैं या जंग करनी है। बाद दफा दोनों चीजों का ख्याल रखना पड़ता है आपको।
जी।
दूसरी बात ये है, जो दूसरा नुक्ता है वो ये कि जो फरीक है, क्या वो जायज है या नाजायज है। असल चीज ये है, क्योंकि फरीक की जो हैसियत होती है वो भी मुख्तलिफ होती है।
जी।
एक फरीक वो होता है जिसके साथ रियासत ने जुल्म किया हो, जबर किया हो, उसका माशी और समाजी इस्तेहसाल किया हो, या अगर ये ना भी चीज हो तो वक्त के साथ साथ उनकी जो पॉलिसियां हैं रियासत की वो ऐसी ना हो कि उसमें इन्वेस्टमेंट की गई हो, तरक्की हुई हो, जिससे लोगों का और आवाम का फायदा हुआ हो। तो अगर ये सूरत हाल होती है तो इंग्लिश में उसको कहते हैं एग्रीव पार्टी, यानी कि उनके जो नुकसानात हैं वो और उनके जो नुकसान है वो जायज हैं, और उस बुनियाद के ऊपर वो अपनी मुतालबात पेश करते हैं और उस पर आगे फिर मुजाकरात होते हैं। दूसरा फरीक, उसकी डेफिनेशन ये है कि उसके साथ कोई जाती नहीं हुई, कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई जबर नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट का मसला नहीं है, ये जो है वो ऐसी डिमांड पेश करता है जो आप पूरी कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे उनकी डिमांड ये है कि भाई ड्रोन हमले बंद करें, ड्रोन हमले हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हमारी पावर में नहीं है। इसी तरह जब वो कहते हैं कि जनाब इस्लामी हुकूमत जब तक नहीं आएगी हम नहीं जंग को बंद करेंगे, वो भी हमारी जो पूरे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है और जो सिस्टम बना हुआ है तो उसमें इस चीज़ की भी गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा ये कि फरीक भी दो किस्म के होते हैं। अब यहाँ से उनकी नीयत का भी पता चलता है, अगर वो इस तरह की डिमांड पेश कर रहे हैं कि पूरा मुल्क हमारे हवाले कर दो, तो जाहिर है कि ये चीज़ तो किसी भी, चाहे वो जायज़ हुकूमत हो या नाजायज हो, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी एक फरीक को ये हुकूमत या पूरा सिस्टम चलाने की इजाज़त दी जाए। हमारे सामने मिसाल है श्रीलंका में 20-25 साल खाना जंगी चलती रही, लेकिन वो वहाँ के अंदरूनी लोग थे, लेकिन आखिर में बातचीत भी चलती रही, लेकिन आखिरकार जब तक उन्होंने फौजी लिहाज से उनको कुचल नहीं दिया, वो बगावत ख़त्म नहीं हुई थी। तो लिहाजा ये कि हमको दोनों फरीक में थोड़ी सी इम्तियाज करना चाहिए और ये देखना चाहिए अगर उनकी डिमांड इस तरह की है, कोई जायज़ और ज़ाती डिमांड नहीं है अपने लोगों की, अपने इलाके की, उनके साथ कोई उस तरीके से जुल्म नहीं हुआ, हालांकि माहदे हुए जो काफ़ी हद तक पाकिस्तानी हुकूमत ने तोड़ दिए, तो इस हद तक तो वो कह सकते हैं कि कुछ जायज़ डिमांड थी, लेकिन ये कि ये ज़्यादातर मसले 9/11 के बाद, अमेरिकन फौजियों के बाद शुरू हुए। यहाँ पर आता है तीसरा नुक्ता कि जो फाटा का जो एरिया है जिसमें तमाम कबायली इलाके रहते हैं, सवात का एरिया है, 9/11 के बाद ये पूरा का पूरा अमेरिका के हवाले कर दिया गया, जिसके अंदर उन्होंने अपने फौजी, अपने जासूस, अपने ब्लैक वाटर्स और वो सारा जो इलाका है वो उन्होंने डेवलप किया, पूरा नेटवर्किंग की, और उसके बाद जो नतीजा हमारे सामने है। ड्रोन हमले उस वक्त शुरू नहीं हुए थे, इक्का दुक्का हुए थे, लेकिन ये सारी तैयारी शुरू हो गई। और जिस तरह सद्दाम हुसैन को ट्रैप किया गया था, इसी तरह जनरल मुशर्रफ को भी ट्रैप किया गया और लाल मस्जिद का ऑपरेशन कराया गया, जिसकी वजह से जज्बात जो थे लोगों के बिल्कुल भड़क उठे, वो समझ लें स्पार्क था, जिसके बाद वो आग लग गई और ऑलमोस्ट सिविल वॉर शुरू हो गई। तो इसी तरह इससे पता चलता है कि ये जो तालिबान की जो जंग है ये पाकिस्तान को अल्टीमेटली कमज़ोर करने के लिए और पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट करार देने की तरफ डायरेक्शन है। और जब एक दफा पाकिस्तान को यूएन के जरिए फेल्ड स्टेट करार दे दिया गया, तो जिस तरह सीरिया से कहा गया कि आप अपने जो केमिकल वेपन्स हैं वो हमारे पास जमा कराएं, तो इसी तरह जब पाकिस्तान वैसे ही माशी तौर से बड़ा बदहाल है, फौजी लिहाज से भी कमज़ोर है, अगर हम इतने मजबूत होते तो हम कब से तालिबान को शिकस्त दे चुके होते। लेकिन चूंकि अमेरिका की, जैसे हमारे और मेहमानों ने कहा कि अमेरिका की सऊदियों की पुश्त पनाही हासिल है, इसलिए वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। सीरिया में भी यही हो रहा है।
जी
तो अल्टीमेटली ये तमाम जो मुसलमान इलाकों में सिविल वॉर हो रही है, इन सारों का मकसद ये है कि इनको कमज़ोर किया जाए, इनको फेल्ड स्टेट की तरफ लेके जाया जाए जहाँ पे यूएन की इंटरवेंशन हो जाएगी। तो अगर इस तनाजुर में ये चीज़ें देखी जाएं, तो बातचीत भी करनी चाहिए और फौजी लिहाज से भी हमको मजबूत होना चाहिए। अब आते हैं चौथा नुकता कि हम इन दोनों चीज़ों में बहुत कमज़ोर हैं। अगर हम फौजी लिहाज से इतने मजबूत होते तो हम कब का उनको ख़त्म
जी
कर चुके होते। लेकिन ये कि चूंकि हम नहीं कर सके, तो हमेशा जब इंसान फौजी लिहाज से कमज़ोर होता है तभी वो बातचीत की ऑफर करता है। हमने बातचीत की भी ऑफर की, लेकिन उसमें भी हम परेशान हैं, हम तजबजब का शिकार हैं कि भाई हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे। तो उन्होंने जंग जारी रखी जाएगी बातचीत के दौरान या ख़त्म हो जाएगी, तो हम सिर्फ इसलिए नाराज़ हो गए कि जी उन्होंने हमारी फौज पे हमला कर दिया और जगहों पे बम फोड़ दिया। वियतनाम की वॉर हमारे सामने है, 7-8 साल अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी कैसिंगर जो थे वो वियतनाम से गुफ्तगू करते रहे और दूसरी तरफ जंग भी चलती रही। आखिर में जब वियतनाम ने, शुमाली वियतनाम ने अमेरिका को फौजी लिहाज से शिकस्त दी, तभी मसले का हल हुआ। तो या तो हम अगर उनकी जायज़
जी
डिमांड हो तो भी इंसान पूरी करने का सोचे, लेकिन वो उनकी डिमांड ऐसी है कि आप पूरा पाकिस्तान उनके हवाले कर दें, वरना ये कि सीरिया की तरह वो चाहते हैं कि ये सिविल वॉर, एक तरीके से लो
जी
लेवल की सिविल वॉर चलती रहे जिससे पाकिस्तान दिन ब दिन साल ब साल कमज़ोर होता रहे और उस फेल्ड स्टेट के उस नतीजे पे पहुंच जाए जहां के बाद यूएन इंटरवेंशन जो है वो ज़रूरी है। तो इसलिए बातचीत, किससे बातचीत की जाए, उस फरीक की हैसियत क्या हो, उनकी
जी
डिमांड क्या है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम जहन में रखें, उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाएं, तो फिर शायद कोई सी इस दलदल से निकलने का रास्ता हो सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। रिजवी साहब, जनाब पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के मौके पर जो दहशतगर्दाना हमले हुए, जिनका इशारा, जिनकी तरफ आपने भी इशारा किया था, इन हमलों के बारे में पाकिस्तान में क्या तासुर पाया जाता है? इन हमलों में तालिबान के मुलव्वस होने का कितना इम्कान है?
बात यह है कि ये वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा है
जी
कि तालिबान इसमें नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की
जी
कि पहले ये तो तय करें कि कितने ग्रोह हैं।
जी
जैसे भाइयों ने बताया है, एक साहब ने बताया 25 हैं,
जी
यहाँ अखबारात में छपा है कि 90 तक हैं,
जी
मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन उनकी सेंट्रल क़यादत कोई नहीं है। कुछ लोग इनके नाम से भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, दहशतगर्दी के नाम पे सब मेरे लूटमार कर रहे हैं।
जी
अर्ज करने का मतलब यह है कि जो ईद वाले दिन वाक़या हुआ, ईद से पहले
जी
मालाकंड में हुआ, सबात में, ये इतने, और ये फौरी बात थी, एपीसी के फौरन बाद इनका होना जो था
जी
वो बड़ा तकलीफ दे था, इसलिए कि पूरी पाकिस्तान की पूरी नुमाइंदा जमातों ने एक पार्टी को ये इख्तियार दिया कि वो गुफ्तगू करे, उसकी मौजूदगी के बावजूद,
जी
वो रेजोल्यूशन पास होने के बावजूद, वो मैंडेट देने के बावजूद, फिर ये वाकयात होने, इस बात की दलील है कि इन मुज़ाकरात को कोई कामयाब नहीं होने देगा, लिहाजा आपको तय करना होगा कि कौन से ग्रुप हैं जो काबिल एतमाद हैं, जिनसे बात की जा सकती है, जिनसे बातचीत के नतीजे निकल सकते हैं। मैं नहीं समझता कि हुकूमत पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान के पास जो मुक्तदर कुवतें हैं उनके पास इतने ज़राए नहीं हैं या इतना डेटा नहीं है कि कौन कौन सा ग्रोह कहाँ कहाँ मौजूद है। इन तमाम अमूर को सामने रखते हुए मेरी अर्ज करने की सिर्फ ये है कि इन दो वाक़यात ने शहरी को परेशान किया है कि एक चलें, अभी सदीकी साहब ने भी कहा कि मुज़ाकरात भी चलते रहते हैं, लड़ाई भी चलती रहती है। हमने लड़ाई तो अभी तक लड़ी नहीं उनके साथ, और जो ड्रोन हमले हुए हैं जो उनसे उसके ज़रिए मारे गए हैं वो आपके सामने हैं और आपने भी डिटेल बता दी। अब बात सिर्फ ये रह गई है कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर अमेरिका नहीं मानता ड्रोन हमलों पे, हालां अमेरिका ने ये कहा जाता है कि जी अभी साहब ने सदीकी साहब ने हिंदुस्तान से फरमाया कि साहब वो अमरीकी फौजें जाने के बाद और हज़ारों जाने के बाद जासूसों के जाने के बाद अमन हो जाएगा, ये क्या शर्त है। मैं नहीं समझता कि अमेरिका के जाने के बाद करज़ई हुकूमत इतनी मजबूत होगी या करज़ई हुकूमत में इतनी ताकत है कि वो इन तालिबान का मुकाबला कर सके। क्या ये यकीन है कि 14 में चली जाएंगी अमरीकी फौजें? कहीं ये शेड्यूल बाकायदा तौर पर अनाउंस हो चुका है कि कितने जाएंगे और कितने रहेंगे? इन तमाम बातों को पेश नज़र रखते हुए आपको अपने मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक आपने पाक अफगान ताल्लुकात को सामने रखकर अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान दोनों का तयन करना होगा और ये देखना होगा कि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के आइन का तकद्दस और पाकिस्तानी पार्लियामेंट के फैसलों का एहतराम क्यों कर मुमकिन है, और पाकिस्तान की नुमाइंदा जमातों के फैसले के बाद अगर कोई ताकत बज़ोर ताकत ये चाहती है कि वो पाकिस्तान के तमाम मामलात को मलियामेट कर दे या बुलडोज कर दे तो इसकी इजाज़त ना गवर्नमेंट को देनी चाहिए ना हमारी अफवाज पाकिस्तान को। मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो मुंतखब लीडरशिप के फैसलों के मुताबिक इनका साथ देगी। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है कि अफवाज पाकिस्तान अस्करी और सियासी क़यादत एक जगह बैठकर कई दफ़ा ब्रीफिंग दे चुके हैं और कई दफ़ा ये फैसले कर चुके और अब हतमी फैसला भी कर चुके हैं कि मुज़ाकरात करें। अगर मुज़ाकरात को कुछ सेबोटाज कर रहा है तो सेबोटाज के हाथ रोकने होंगे आपको, वरना ये मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होंगे ना मुज़ाकरात हो सकेंगे, और इससे पाकिस्तान को जैसे सदीकी साहब ने भी कहा, शफी साहब ने भी कहा सॉरी जी, कि वो जो नीयत है उनकी कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट, पाकिस्तान को कमज़ोर, पाकिस्तान को फेल हुकूमत, ये इरादे इनके कामयाब नहीं होने चाहिए। अगर ये कामयाब हो गए तो यकीन मानिए कि मुस्लिम उम्मा को वो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचेगा कि फिर मुसलमान मुस्लिम उम्मा कभी शायद उठने में कई साल लग जाएंगे, मैं तो कहता हूँ कि कई सदियाँ लग जाएंगी, क्योंकि आज मुस्लिम उम्मा के साथ जो कुछ हो रहा है, सीरिया में जो हो रहा है, मिस्र में जो हो रहा है, ट्यूनिस में जो कुछ हुआ, उससे पहले ईरान में जो कुछ हो चुका, इसके बाद तो भाई कोई जगह नहीं रह जाती आपके पास। अगर आप और अभी ठीक कहा उन्होंने कि ये तयन करना है कि मुतालबे जायज़ हैं कि नहीं, क्या आपके आइन से तो मुतसादिम नहीं है, क्या आवाम के मैंडेट से तो मुतसादिम नहीं है? ये बड़ी तयशुदा बात है
जी,
कि आवाम का फैसला जो होता है वो मैंडेट वो एक हतमी फैसला होता है और आवाम ने ये मैंडेट दिया है इस हुकूमत को भी और इन पार्टियों को भी जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के आइन की सलामती और पाकिस्तान के पार्लियामेंट के वकार के लिए जो भी फैसले करेंगे वो उनके साथ होंगी। लेकिन मैं बार बार एक बात फिर दोहरा रहा हूँ कि आपको पहले तयन करके पूरी कौम को इतमाद में लेना है
जी, जी
कि ये कौन से कितने ग्रुप हैं, कितने हैं, कौन कौन हैं, कहाँ कहाँ हैं, और अगर आवाम को ये पता चल जाएगा तो मुमकिन है बेशुमार कवाहतें ख़त्म हो जाएँ और आवाम इस बात से आगाह हो जाएँ, उन इलाकों से आगाह हो जाएँ जहाँ वो ग्रुप मौजूद है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब,
इससे
जी
और पाकिस्तान आइंदा के लिए मुज़ाकरात भी कर सकेगा, जंग भी लड़ सकेगा।
बहुत बहुत
वरना इसके बगैर अवाम बेखबरी में मारे जाएंगे
जी,
और कोई ताकत रात के अंधेरे में डकैती करने वालों का हाथ नहीं रोक सकती
जी,
और किस जेन में ये नहीं पता होता कि किसी के जेन में क्या चल रहा है, उसको ढूंढने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए उन इलाकों को मार करना होता है, उन ग्रोहों को मार करना होता है, और अगर आपका आपका फरीक ये नहीं पता आपको कि आपके फरीक की कमीनगाह कौन सी है, तो फिर इसका उसके उस मुज़ाकरात का फ़ायदा क्या
जी, जी
उस मुज़ाकरात से हासिल क्या होगा आपको जो
जी। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब और सिद्दीकी साहब। जनाब मुज़ाकरात के ताल्लुक से पाकिस्तान के अंदर राय आम्मा कितनी हमवार है?
मैं समझता हूँ जहाँ तक मैंने इसको गौर किया है कि लोग ये लोग जंग से तंग आ गए हैं, यानी जो परवेश शरीफ साहब ने बात कही वो भी बात समझ में आती है कि मुज़ाकरात और जंग कभी कभी साथ चलते हैं, लेकिन अगर आप तारीख को देखें तो उससे ये जाहिर होता है, जैसा मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मैं मिसाल दूंगा यहाँ की कि जो इनका सूबा नॉर्दर्न आयरलैंड है उसकी, जिसमें करीब 50-60 साल से रोमन कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में खाना जंगी थी, और बाकायदा तौर पे जो 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 पार्टियाँ दहशतगर्दी कर रही थी, जो दोनों तरफ से फरीकैन की एक दूसरे को कत्ल कर रही थी, फिर आखिर में उनके पोलिटिकल ग्रुप्स को उन्होंने सामने आने दिया और उन्होंने बैठ के मज़ाकरात किए बरतानवी हुकूमत के साथ, और फिर अब उसका नतीजा ये है कि तकरीबन मुकम्मल तौर पे वहाँ पे अमन हो गया। मैं समझता हूँ कि बंदूक के जोर के ऊपर ये जो है ये कभी भी किसी इस किस्म के मसले का हल नहीं हो सकता। बदकिस्मती से मुशर्रफ साहब ने जब 12 सितंबर 2001 में को वो जो था इसके कोलिन पावेल की 7 डिमांड्स को मान लिया था, और जो जो बुश की वॉर ऑन टेरर पे में जब शामिल हो गए, तो उसका नतीजा ये मुल्क अभी तक भुगत रहा है, और ये जो वॉर ऑन टेरर का जो ये जो मसला है उसी का नतीजा ये हुआ कि तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान वजूद में आए वगैरह। तो अब ये सवाल होता है कि पाकिस्तान में लोग चूँकि परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं दहशतगर्दी से पूरे पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर कबाइली इलाकों में, और ये ज़ाहिर है कभी पेशावर में भी हमने देखा, कभी कराची में, कभी लाहौर में भी हो जाता है, कि वो लोग चाहते हैं कि भाई किसी सूरत से मुज़ाकरात शुरू हों ताकि मुल्क में अमन हो। अब जहाँ तक इसका मुज़ाकरात का सवाल है, मुझे तो हैरत इस बात की है कि इतनी ज़्यादा ये जैसे परवेश शफी साहब ने कहा कि जो इनकी डिमांड्स हैं वो ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानी हुकूमत उसको नहीं मान सकती, लेकिन दोनों तरफ से थोड़ा बहुत शुरू में जब 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 डायलॉग शुरू होता है तो बहुत लंबी लिस्ट होती है डिमांड्स की, लेकिन कम से कम एक दफ़ा जो डायलॉग हैं मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, और उसके बाद फिर ये है कि अगर सिर्फ ये इस बात पे ये बात तय हो जाए कि जिस दौरान में मुज़ाकरात हो रहे हैं उस दौरान में दोनों फरीकान जो हैं, मतलब ये कि जो खाना जंगी है या टू पुट डाउन द आर्म्स, उस दौरान में कम से कम कि उस वक्फे में वो नहीं होगा ये कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है वो नहीं करेंगे। अब सवाल ये बहुत बड़ा पैदा होता है कि इतने सारे ग्रोह हैं, 25 हैं, 30 हैं, 90 हैं, कुछ हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो हसास एजेंसी जो सीक्रेट सर्विस हैं उनको इल्म है कि जो खास तौर पर बड़े बड़े ग्रोह कौन हैं, और उन लोगों को तो निकाल दीजिए जिनकी तरफ से कभी मैंने जिक्र किया और परवेज साहब ने भी कि जो अमरीकी एजेंट जो हैं जो ये जब जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उनका तो शायद पता नहीं होगा, तो उनको भी इसमें उन सारे 25 या 30 या 90 ग्रोहों को तो शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन उनमें भी खास कुछ ऐसे होंगे जिनको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अभी पिछले दौरान में जितने हादसात हुए हैं ऐसे आपको इल्म होगा कि तहरीक के हकीमुल्ला मसूद का जो ग्रुप है उसने हर एक से इनकार किया कि हमने ना तो पेशावर में वो जो ईसाइयों के गिरजे के ऊपर हमला हुआ था, ना जो उनको जनरल नियाजी का कत्ल हुआ था, वगैरह सबसे उन्होंने इनकार किया है। तो जाहिर है कि या तो ये और ग्रोहों ने किया है या अमरीकी एजेंट्स ने किया है। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि सिर्फ हकीमुल्ला मसूद से बात नहीं हो सकती, बल्कि और जो ग्रोह हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव को लाना पड़ेगा।
जी
और जब भी मैं समझता हूँ कि बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर सिर्फ ये ख्याल किया जाए कि अब इन क्योंकि इनके डिमांड जितने ज़्यादा हैं हम उसको नहीं मान सकते, और हमें मुमकिन है कि शुरू में बंदूक का ही सहारा लेना पड़े, इससे कभी 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 नहीं मसला हल होगा। अगर आप देखें तारीख में ये हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान के दौरान में जो जंगें हुई हैं, तो जंग के बाद वो आखिरी जो जंग हुई थी 1971 में, उसके बाद भुट्टो साहब जो थे वो वहाँ गए, वहाँ पे इंडिया और वहाँ के जाके उन्होंने शिमला अग्रीमेंट किया वगैरह। तो यानी कुछ भी है वो मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, क्यों चूँकि बंदूक के ज़रिए कभी भी हल नहीं निकलेगा। इस मुझे जो एक बात कुछ हम लोग को बहुत सोचने वाली है
जी
और बहुत ही परेशान कुन है, वो ये है कि पाकिस्तान को जैसा डॉक्टर परवेज ने सभी ने कहा कि फेल्ड स्टेट करके, और ये ना कहा जाए कि जो पाकिस्तान के जो एटमी असले हैं उनको यूएन या जो भी कोई अपने कब्जे में कर ले, और पाकिस्तान पे वो जो था है वो कोई कहीं का ना रहे, मतलब ये उसी की वजह से तमाम मुल्क जो है पाकिस्तान से, ये जो अमेरिका और जो
जी
हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं पाकिस्तान से थोड़ा डरते हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तानी आवाम का सवाल है, मुझे पूरा यकीन है कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही ये मसला हल हो। ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि मुज़ाकरात शुरू
जी
करें, उनकी उनको अपने डिमांड उनकी चलने दें, अपनी भी वो रखें, और उम्मीद है कि आइंदा चल के कुछ
बहुत
ना
बहुत
कुछ
शुक्रिया
इसका मसला पॉजिटिव निकल जाएगा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शफी साहब, बहुत से लोग तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हदफ के बारे में भी सवाल उठाते हैं। जाहिर है दो मुल्कों में जब इख्तलाफ होता है, लड़ाई या जंग के बाद मुज़ाकरात होते हैं, तो उनका हदफ कुछ और होता है। यहाँ जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें हुकूमत का हदफ क्या है? तालिबान के पेश नज़र भी कोई हदफ होगा? 3 मिनट का वक्त है हमारे पास।
अच्छा, जाहिर है जैसे आपने बात की है,
जी
हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी आवाम तो जाहिर है ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अमन जितना जल्दी कायम हो जाए वो अच्छा है, क्योंकि
जी
लोग भी तंग आ गए हैं, जानी और माली नुकसान भी बहुत हुआ है। तो पाकिस्तान तो जाहिर है ये चाहता है कि अमन हो जाए, लोग हथियार फेंक दें, और वो पहले से जो 90s और 80s में जो हालात थे वहाँ पे वापस चले गए। अब बात आती है कि तालिबान का हदफ क्या है। अब हदफ और उनके जो अमाल हैं, अमल हैं, वो उनकी नीयतों से पता चलते हैं, और नीयत कहाँ से पता चलेगी? जो स्टेटमेंट अभी तक दिए हैं और जिस तरह वो इस इलाके में पल बढ़ के मजबूत हुए हैं, किनको किन्होंने उन किन मुल्कों ने उनको हथियार फराहम किए, किन मुल्कों ने उनको नज़रियात दिए कि और इस हद तक किया कि भाई वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो बात फिर वहाँ पर आ जाती है। अगर मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है, मिक्स दोनों का होना चाहिए, लेकिन अगर तालिबान की ये नीयत है कि पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट की तरफ लेके जाया जाए, तो वो फिर बातचीत जो है वो खामखा लंबी और तवील होगी, और लंबी लंबी बातें होंगी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि मकसद ये है कि पाकिस्तान को माशी और फौजी
जी
बदहाली की तरफ लेके जाया जाए, जहाँ
जी
पे यूएन उसको फेल्ड स्टेट करार दे दे। अगर ये मकसद है तो जाहिर है बातचीत कभी कामयाब नहीं होगी,
जी
तो उसका फौजी हल ही है। लेकिन अगर हम उसमें भी कमज़ोर हैं और हमारी डोरियां कोई और हिला रहा है, पॉलिसियां कोई और बना रहा है, बाहर से बन रही हैं,
जी
तो जाहिर है फिर हम उसमें भी पूरी तरह कामयाब नहीं होंगे। तो लिहाजा ये हमको ये देखना है कि हमारा फरीक कौन है,
जी
उसकी अगर ये डिमांड है तो उसकी डिमांड से पता चलता है कि भाई ये
30 सेकंड
पाकिस्तान में
का वक्त
रहने के
हमारे
हक
पास।
में है या ये पाकिस्तान को तोड़ने के हक में है। इसी तरह बाहर की जो इंटरफेरेंस है वो चाहता है कि ज्यादा हो जाए या इंटरफेरेंस कम हो जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार अली रिजवी साहब, डॉक्टर शफी और डॉक्टर मकसूद सिद्दीकी, तीनों हजरात के हम शुक्रगुजार हैं। बहरहाल जहाँ तक हदफ का सवाल है तो हुकूमत पाकिस्तान का हदफ तो यकीनन क़याम अमन है, अमन व अमान की फराहमी है, लेकिन तालिबान के पेश नज़र जो हदफ है उसके बारे में और इसी के साथ तालिबान के जो डिमांड हैं, जो उनके शरायत हैं, उनके बारे में हम आइंदा किसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@thesahartv.ir। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।